पांच में सारी लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते। पांच में सारी माने क्या?
पंच
उपासक इत्यादि है। गणेश भी प्रसन्न रहे, सूर्य भी प्रसन्न रहे, शक्ति भी प्रसन्न रहे, कृष्ण भी प्रसन्न रहे, वो भी शिव जी भी प्रसन्न रहे, सब लोग प्रसन्न रहे, तो वो किसी को नहीं प्रसन्न कर सकता। एक कृष्ण की पूजा करने से सब लोगों की पूजा करनी हो जाती। इस चीज को समझना चाहिए। तस्मिन तुष्टे भक्त्या अहम एक यात्रा जी। भक्ति करने से कृष्ण की सबकी हो जाती है, अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक एक साधे सब, अकब साधे सब। इस चीज को याद रखना है। तो कुछ कठिन किंतु ऐसा करना चाहिए। उनके बहुत से उपदेश हैं। हम लोग शाम को 4 बजे बैठेंगे, 4 बजे से 6 बजे तक उनके उपदेशों को हम लोग पाठ करेंगे, समझेंगे और वैष्णव लोग उनके संबंध में बतलाएंगे। वो सबको कृपा करें और भजन की शक्ति दें। उनके चरणों में यही हम प्रार्थना करते हैं। आज अभी हम लोग अभी अर्चन करेंगे और पुष्पांजलि देंगे। आप लोग सब पुष्पांजलि दीजिए और उनके उपदेशों को धारण करने की चेष्टा करें।
गौर प्रेमानंदे
इस जगत के व्यक्ति नहीं, वो ग्लोक वृंदावन में श्रीमती राधिका जी की परम प्रिय सेविका है। उनके आदेश से राधा जी की नैन के समान प्रिय ये नैन मंजरी जगत में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के रूप में प्रकटित है। इसलिए आए लोग आजकल, आज से 60-70 वर्ष पहले या और भी 100 वर्ष पहले धर्म के नाम पर लोग अधर्म का सेवन करते थे। लोग महाप्रभु के विचारों को समझ नहीं सके, दूसरी की स्त्री को लेकर के राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन में भजन करना ही ये भजन समझते थे रागानुगा। धर्म के नाम पर अधर्म चारों तरफ में बोलबाला। कोई धर्म करे न करे उस वंश में, गोस्वामी के वंश में आया तो वो गोस्वामी हो गया। ब्राह्मण का कर्म करे और न करे, रावण की तरफ में रहे तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा और सबसे पूजा लेने का अधिकारी बनता है। ये शरीर को ही गोपी बनाकर मुख और ये सब उड़वाकर केवल केस रख करके नाक में नथनी लहंगा चुंदरी पहन करके पुरुष लोग भी गोपी बनकर के ललिता विशाखा बनकर के भजन करते थे। धर्म के संबंध में कुछ नहीं जानते थे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वेदों का साथ साथ पर यह वेदांत है। उपनिषदों को वेद का शिरोभाग कहते हैं। वेदांत उपनिषदों का सार निष्कर्ष ही वेदांत है। बिना वेदांत को जाने मनुष्य का कल्याण नहीं, वो धार्मिक नहीं हो सकता। किंतु वेदांत को समझना बहुत कठिन है। जितना वेद है और उसके मंत्र हैं वो ब्रह्म में समन्वय के रूप में है, ब्रह्म को ही निर्देश करते हैं। किंतु उनमें तात्पर्य है किस मंत्र के साथ में कौन मंत्र का क्या संबंध है। साधारण लोगों के लिए यह निर्धारित करना बड़ा कठिन है। इसलिए व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। ब्रह्म सूत्र का अप्राकृत भाष्य श्रीमद् भागवत सभी मानते हैं, किंतु प्राचीन काल में एक ऋषि हो गए हैं बोधायन। बोधायन ऋषि ने भागवत रचते हुए भी और उसको सुलभ करने के लिए वेदांत के समस्त प्रमाणों को और भागवत के प्रमाणों को लेकर के उन्होंने उनकी एक व्याख्या दी जिसको बोधायन भाष्य कहते हैं। तो पहला हुआ भागवत और दूसरा हुआ क्या? बोधायन भाष्य। ये सब वैष्णव विचार, भक्ति के विचार। कृष्ण निर्विशेष नहीं है, कृष्ण ही परम तत्व है, रसमय वह है, ये सब दिख रहा है। जीव भी अनित्य नहीं है, नित्य है। उनकी तीन अवस्थाएं हैं, बद्धावस्था, तटस्था अवस्था और मुक्तावस्था, और तीनों ये मिथ्या नहीं है। नश्वर में बद्धावस्था नश्वर है, तटस्थावस्था एक तटस्थावस्था है, और मुक्त अवस्था ही जीवों का स्वरूप परिलक्षित उसमें होता है। तो इन सब को जाने बिना वैष्णव नहीं हुआ जाता, इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने पीछे से ये दो भाष्य रहते हुए भी भागवत और बोधायन का भाष्य उन्होंने गोविंद भाष्य लिया। इसलिए गोविंद जी ने आदेश दिया, गोविंद देव के आदेश को पूरा करने के लिए, जगत कल्याण के लिए उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा। गोविंद भाष्य में चार प्रकरण है। पहला प्रकरण है जितना वेद है वो सब एक प्रभु को ही अन्य और व्यतिरेक में लक्ष्य करते हैं, उसका समन्वय दिया। तत्व समन्वय अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, और इसके बाद में बतलाया तत्व समन्वय सत्व योनि। दूसरा प्रकरण क्या है? वेद में परस्पर कहीं भी परस्पर विरोधी वाक्य नहीं है, उसका समन्वय दिख रहा है। तात्पर्य के अनुसार में उनका विचार किया। और तीसरा है साधन, और चौथा है प्रयोजन। अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति तत्व, और इसमें साधन में अथवा अभिधेय में बतलाया अभ्यास आनंदमयो अभ्यास। भक्ति रस नहीं है इसका अभ्यास, पर सुंदर रूप से इन चारों को उसमें दिया बलदेव विद्याभूषण ने प्रभु के आदेश। इन सब तत्वों को नहीं जाने बिना वैष्णव नहीं हुआ जाता, यही समझो। और जो आया उसको कहा जैसे अपना दाढ़ी मोछ कमा लो, गोपी भाव बना लो और लथिया पहन लो, और गोपी मंत्र ये ले लो। पैखाना करने के बाद में शौच करना भी जो नहीं जानता, वैष्णवता से कोई संबंध नहीं है, और ऐसा ही अनुकरण करते हैं, इनको कहते हैं सहजिया। उस समय सहजिया से देश भरा हुआ, अधर्म को ही लोग धर्म समझते थे। पृथ्वी से धर्म नामे जत कथा चले, भागवत कहा कहे कहा परिपूर्ण। विशेष करके हम जो प्रचार करते हैं अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं तो वो कर्म है। प्रभुपाद जी का ये विचार बतला रहे हैं, ये समझे इसलिए आए थे। यदि कोई प्रचार करता है भगवान का नाम करो और नहीं करो, जिनको भगवान में विश्वास ही नहीं है और पैसे के लिए रुपये के लिए अपने हानि के लिए लाभ के लिए भगवान का नाम करते हैं, और दूसरों कहते हैं कि तुम लोग हम प्रचार करते हैं हरि नाम करो और खुद नहीं करते, भगवान में आतंक भक्ति जिनको अनन्या भक्ति नहीं है, और दूसरों को कहते हैं कि तुम लोग
दूसरों को कहते हैं कि देखो कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा पर हो और खूब स्वार्थ से भरे जकड़े। दूसरों को कहते हैं खूब त्याग करो और अपने भोग में मत रहो। ऐसे प्रचारक प्रचारक नहीं है, ये क्या है, कली के क्या है, कर्म मार्ग से भी निम्न गए। ऐसे ही विचार उस समय में फर्क हो रहे, लोग भक्ति नहीं जानते, खुद लाख लाख कोटि कोटि रुपया देकर के मंदिर बनाते थे और भगवान के नाम पर अपने खाते थे, पहनते थे। प्रभुपाद जी ने कहा विग्रह क्या है, हरिनाम संकीर्तन ही विग्रह है। हरिनाम संकीर्तन जिस मंदिर में नहीं है वो मंदिर सूना है, विग्रह रहने पर भी वो सूना है, उसी की पूजा यही सह किया है। हाँ, विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम, विग्रह क्या है, कली काल में विग्रह क्या है, भगवान नाम संकीर्तन। जो ये करता है और उसके लिए मंदिर में प्रतिष्ठा होती है और सब लोग आकर के भगवान नाम कीर्तन करते हैं, कीर्तन के माध्यम से अर्चन, कीर्तन के माध्यम से सेवा, कीर्तन के माध्यम से पूजा, कीर्तन के माध्यम से रसोई, कीर्तन के माध्यम से सब कुछ होता है। यद्यपि अन्य भक्ति कर्तव्य तदा कीर्तन अच्छा भक्ति संयोगेन वक्तव्यम्, किन संकीर्तन के माध्यम से, नहीं तो कली काल में केवल अर्चन करेंगे ना, उसका फल नहीं होगा। वैष्णवता उसमें है ही नहीं है, जानता ही नहीं कि किसको बोलते, इसलिए इसको जानना भी जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सभी बातों को इतना सुंदर विचार करके दार्शनिक दृष्टि के ऊपर में प्रतिष्ठित किया जो शुद्ध भक्ति का प्रचार। यदि प्रभुपाद जी नहीं आते तो शुद्ध भक्ति धारा नहीं, अब वो भी क्रम से अब धीरे 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 लुप्त होता जा रहा है। तो भी अभी प्रभुपाद के लाइन में कुछ कुछ है। उन्होंने एक बात बतलाया, मैं बहुत संक्षेप में बतला रहा हूं, ऑन्टोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। ऑन्टोलॉजी किसको कहते हैं, मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, एक बाह्य विचार और एक अंतर विचार। दीक्षा के लिए कहा जिसे केवल अनुष्ठानिक दीक्षा जो होती है ये क्या है, मॉर्फोलॉजी। और शिक्षा के माध्यम से जो दीक्षा होती है वो ऑन्टोलॉजी है। ये सब विचार ऑन्टोलॉजी के हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब विचार जिसमें भर दिए जाए, इसलिए प्रभुपाद जी आए। मंदिर खूब खड़ा कर दिया, भोग उत्सव हो रहे हैं, खाना पीना सब चल रहा है, ये क्या है, मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। यदि अंतर से कृष्ण के प्रति ममता नहीं आई, वैष्णव की सेवा नहीं हुई और इस प्रकार का शुद्ध प्रचार नहीं हुआ तो सब मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। एक उन्होंने बतलाया, एक ऊपर से आता है और एक नीचे से, आरोह बाद अवरोह बाद। भक्ति क्या चीज है, अवरोह बाद, आरोह बाद नहीं है। कर्मी ज्ञानी तपस्वी जितने हैं ना, ये सब क्या है, आरोह बाद नीचे से अपने इंद्रियों के परिश्रम से चलते हैं। यशोदा मैया कृष्ण को जो पहले बांध रही थी वो क्या चीज था, आरोह बाद, अपने हम परिश्रम से कर ले, इसलिए आरोह बाद। और पीछे से जो उन्होंने किया, दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया चित्त संबंधने, उनका परिश्रम का साधन का देखा और वो अपने आप बंध गए। ये है भगवान को ऊपर से उतरना। जो लोग आरोह बाद पंक्ति हैं उनको भक्ति नहीं है, हम अपने साधन से भक्ति कर लेंगे। प्रभुपाद जी का विचार था जो नहीं ऐसा मत करो, आरोह बाद तुम योग्य पात्र बनो, उनके प्रति अनकंडीशनली सरेंडर करो और जब ऐसा कर जाएगा, शरणागत हो जाएगा प्रभु मैं सबसे मूर्ख जगत में हूँ, हमारे जैसा और विश्व ब्रह्मांड में मूर्ख नहीं था, मैं बहुत ही दीन और हीन हूँ, आप हम पर दया करें। तो भक्ति देवी क्या करती हैं? ऊपर से ऊपर, अन्यथा हम भक्ति को जान करके कर लेंगे साधन के द्वारा भक्ति हो जाएगी, कस्मिन काल में नहीं होगी। प्रभुपाद जी का यह विचार था। प्रभुपाद जी छोटे छोटे विचारों को बहुत गंभीरता से लेकर के विचार करते। उन्होंने कहा कि सालक राम से बादाम मत तोड़ो और खाओ। मतलब क्या? एक पुजारी जी गया ठाकुर जी के घर में और बादाम रखा था, लाल लाल होता है, कठिन कठिन उसके कठोर पर्दे होते हैं, मुख में पानी भराया जो बादाम खाएंगे, तो देखा जो बादाम तोड़ने के लिए तो कुछ है नहीं ठाकुर घर में, देखा जो दो सालग्राम है बड़े बड़े, तो एक सालग्राम को नीचे रख करके दूसरे को बीच में रख करके और उससे तोड़ लो। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा मत करो। माने क्या? भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर तुम ऐसा काम मत करो। गुरु जी के नाम पर, वैष्णव के नाम पर, भगवान के नाम पर कुछ लेकर या मिलने पर हजम मत करो, हजम नहीं कर सकेगा। कोटि काल तक जन्म जन्मांतर में उसका फल भोगना पड़ेगा। पाप करने का फल तो भूवक्त लेते हैं नरकों में, अपराध का फल नहीं भोगी, बड़ा भारी मस्ती है उसके लिए और नरक नहीं आना। उन्होंने बतलाया ज्ञान के द्वारा हमारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। तीन अवस्थाएं हैं जीव की, बद्धावस्था, मतस्थावस्था और मुक्तावस्था। में क्या है? स्वरूप और तद्रूप वैभव। स्वरूप मैंने कृष्ण साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अखिल सामने सिंधु, ये स्वरूप है। तद्रूप वैभव का गोलोक वृंदावन द्वारका इत्यादि, वैकुंठ इत्यादि और वैष्णव जो भगवान के परिकर हैं, भगवान के जो अवतार इत्यादि हैं, ये सब क्या है? तद्रूप वैभव। ये सब स्वरूप शक्ति के प्रकाश। और तटस्थावस्था क्या है? ये जीव एक तरह से न तो भगवान की सेवा है और न तो ये संसार में है, दोनों के बीच की अवस्था है। कोई अवस्था तो नहीं है ऐसी, कल्पना नहीं की जा सकती, तो भी है ये जीव से एक बात है एक तरह से, और दूसरी है बद्धावस्था। बद्धावस्था माने क्या? जीव भगवान का नित्य दास होने पर भी जब ये सब हमारे भोग्य हैं विश्व का, क्या कि माया के द्वारा परिणित ये विश्व जो कुछ है हमारे भोग के लिए है, इसी का नाम है बद्धावस्था। इसमें से बद्धावस्था और तटस्थावस्था दोनों भक्ति के प्रतिकूल है, भक्ति के लिए उपयोगी नहीं। ज्ञानी का निर्विशेष ज्ञान ये तटस्था अवस्था पर, उसी तटस्थ अवस्था में जीव सब को ही ब्रह्म कहते हैं और उसके आनंद को आनंद ब्रह्मानंद कहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा विशेष करके तीन बातें दी, एक संबंध का अवदान, एक अभिषेक का अवदान और एक प्रयोजन का अवदान। संबंध का अवदान माने क्या? कृष्ण देवताओं की तो बात क्या, समस्त अवतारों के भी अवतारी मूल हैं। ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की आराध्य हैं, इनसे ये मदन मोहन है, इनसे हमारा जीव का संपर्क है, संबंध है। अभिज्ञे ने क्या बतलाया, ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि हमारे लिए अभिधेय नहीं है, साधन नहीं है। हमारे लिए साधन एकमात्र भक्ति है। शास्त्रों से तरह तरह के विचार लेकर के उन्होंने स्थापित किया। ये भक्ति दो प्रकार की है, एक वैधी और एक प्रधान। प्रथम अवस्था में जीवों के भोग को कम करने के लिए भक्ति है साधारण, जिसको साधन भक्ति का। और जीव के सर्वानुबंधी जो वृत्ति है भगवान की सेवा की, जब वो औषधि में प्रदर्शित होती है तो उन लोगों के लिए रागन का भक्ति है। तो जब तक वो वृत्ति जागृत नहीं होती तब तक हम लोग वैधी भक्ति करने के लिए बाध्य हैं, और उसी समय में वैदिक भक्ति का अधिकार होते हुए रागानुगा भक्ति में जाएंगे। इसी का नाम कह दिया है, कह दिया और कुछ नहीं, अधिकार का उल्लंघन करना ही यह कह दिया भाव। इन सब चीजों को समझना चाहिए। साधारण आदमी को तो प्रवेश नहीं है, किंतु जो प्रचारक होगा उसके लिए ये सब जरूरी है जान करके। सब प्रचार करा नहीं तो वो भी कह दिया है और कर भी होगा। प्रयोजन सत्र में उन्होंने बतलाया साधन के संबंध में, रूप गोस्वामी ने जो भक्त स्वामी सिंधु उज्ज्वल निर्जीवनी में जो साधन बतलाया है वही हमारे लिए प्रधान था। उसमें भी हरिनाम जो है वो समस्त सत्तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ। नाम संकीर्तन में यदि रागानुगा वैष्णव के अधीन में रसिक वैष्णव कर्तव्य वैष्णव के अधीन रह करके ब्रज में रह करके निरंतर कृष्ण नाम हम यदि करेंगे तो उसके द्वारा ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वो पाए गए। किस रूप में? गोपियों के प्राण बल्लभ के रूप में पाए जा रहा है, अन्यथा नहीं। विशेष करके कलयुग में नाम आश्रय योग करना पड़ेगा। प्रयोजन के संबंध में बतलाया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष अधोक्ष और अवरोक्ष। इसके पहले किसी आचार्य ने ये सब चीजों को नहीं बतलाया, कोई भेद नहीं बतलाया, किंतु बात ऐसे ही पहले से ही है। व्यास जी ने भी ब्रह्मसूत्र इत्यादि में लिखा है, हमारे आचार्यों ने भी कहा है, किंतु स्पष्ट करके इतना नहीं बतलाया। प्रत्यक्ष माने हम जो देखते हैं इसको सत्य मानते हैं, ऐसा जो मानेगा वो ब्रह्म है। परोक्ष स्वर्ग इत्यादि परोक्ष हैं, नहीं दिखते हैं तभी वो हैं। इससे भी अधिक बढ़ करके मुक्ति है, यह है अपरोक्ष अनुभूति। शंकराचार्य इत्यादि के विचार या सर्व दर्शनों में पांच दर्शनों का यही विचार है। अपरोक्ष आतंक दुख एवं निवृत्ति इत्यादि बतलाते हैं। कोई कोई इसे पढ़ करके अध्यक्ष में आए विष्णुअंगी लाभ मुक्ति बतलाया, यहां से आरंभ हुआ। अर्थात अपराकृत इंद्रियों के द्वारा जो है जो भजनीय जो कृष्ण है वो हो गया अध्यक्ष अधातम अतिक्रांतम अक्षजम ज्ञानम येन सह। नारायण की सेवा ही अध्यक्ष की सेवा है। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं इससे भी और आगे बढ़ो, चैतन्य महाप्रभु ये सब देने के लिए नहीं आए थे, ये तो पहले के आचार्य लोग दे गए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का भी अवदान वही है जो चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया कि नमो महाबदन आय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्ण आय कृष्ण चैतन्य नामने गौगर। ये प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर उनके लाइन में आने वाले आचार्य रूप गोस्वामी इत्यादि महा महाबदान आए हैं। क्यों? चैतन्य महाप्रभु के इन विचारों को कौन समझता? यदि रूप कलि शरीर अनधार, यदि रूप सनातन शरीर नहीं धारण करते और जगत में प्रचार नहीं करते, महाप्रभु जी अप्रचारित रह जाते, अप्रकाशित रह जाते। महाप्रभु के परिकरों ने ही महाप्रभु जी को जगत में प्रकाशित किया, कृष्ण को प्रकाशित किया, राधा जी को विशेष करके इन लोगों ने प्रकाशित किया। प्रकाशित नहीं
है, यह उन्हों का वही। इसीलिए उन्हीं की धारा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर और ये प्रभुपाद जी नमो महा महावदन्याय कृष्ण प्रेम, जिसलिए चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय उनके ये भक्त लोग आचार्यों में से प्रभुपाद जी अपूर्व प्रतिभाशाली आचार्य थे, जो कि पहले के आचार्य लोग जो हजारों वर्ष में और हजारों माने संपत्ति के द्वारा जो जिसका प्रचार किया, प्रभुपाद ने एक पैसे के वक्ते के द्वारा अपने छोटे के ब्रह्मचारी और सन्यासियों के द्वारा, बाल ब्रह्मचारी और बाल सन्यासियों के द्वारा प्रचार, लोग कुछ भ्रमित हो रहे थे, निर्जन में भजन करने से कुछ खाने से नहीं, त्याग से नहीं, खूब त्यागी हैं, भले ये महात्मा जी हैं, कुछ मांगते नहीं और दिन भर बैठे रहते हैं, इनको साधु समझते थे। इन्होंने कहा कि नहीं, ये सब साधु साधु कुछ नहीं, इनके अंदर मैंने सोचाया है ये त्यागी, त्यागी माने क्या, निर्विशेषवादी है। ये विश्व जितना है ना वो किस लिए है, भगवान का सेवा का उपकरण है, जो इनको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता और इनको त्याग करता है तो वो भगवत अपराधी है, त्यागी लोग। एकदम सीधे साध में प्रभुपाद जी ने कहा भगवान की सेवा को और उनकी वस्तुओं को त्याग करना ये क्या है, बाबा की पिता की चीज को और हम त्याग करके फेंक देते हैं, पिताजी की खड़ंग, गुरु जी की खड़ंग, क्या करेंगे हम, पानी तो सकते नहीं खड़ंग, उपयोग तो करेंगे नहीं, तो खड़ंग को क्या करेंगे, उसको फेंक दो। भरत जी रामचंद्र जी को खड़ंग तो क्या किया, सिंहासन पर रख करके उनसे आदेश मांग कर दिया। इसे विश्व की समस्त चीजें जो हैं, विश्व का जो कुछ चेतन अचेतन जो कुछ है वो भगवान के लिए भगवान की सेवा का उपकरण, उसको जो त्याग करते हैं वो अपराधी होते हैं। इसलिए त्याग मत करने जाओ और भोग भी मत करने जाओ, ये यहाँ पर भोग भी नहीं है, त्याग भी नहीं, क्या चीज है ये, भगवान की उन वस्तुओं से भगवान की सेवा करो, तब तक ये यथार्थ हुई, इसी का नाम है भक्ति। और जो लोग उसको त्याग करते हैं वो भी अपराधी, और जो लोग भोग करते हैं वो भी अपराधी। प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति जो है वो तृतीय पंथा मुरारे, तृतीय पंथा क्या करो, प्रत्येक वस्तुओं को अपना मत मानो, त्याग मत करो और न भोग करो, भगवान की ना धर्मन ना धर्मन सुटिगन निरीक्षण करो, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचय ज्ञान, ये प्रभुपाद जी का विचार। इसलिए प्रयोजन तत्व में भी अपराकृत तत्व कौन है, कृष्ण, ये कृष्ण भी चार प्रकार के हैं, एक गोलोक में रहने वाले स्वकीय भाव और ऐश्वर्यमय भूमि में, और द्वारका में ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य, मथुरा में ऐश्वर्य और माधुर्य बराबरी का, बल्कि ऐश्वर्य अधिक माधुर्य कम, और ब्रज में ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में होते हुए माधुर्य वहां पर प्रबल है। ये माधुर्य ही विग्रह श्री कृष्ण है, ब्रजेन्द्रनंदन श्याम सुंदर है, गोपी भाव की आराधना ही कृष्ण की सर्वोत्तम आराधना है, श्रीमद्भागवत ही मूल प्रमाण है, ये सब प्रभुपाद के प्रचार के विषय है। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को अभी कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे उनकी वाणियों से मुग्ध हो गए, उनको लेकर के और आरंभ किया। हमारे गुरु महाराज जी उनमें से एक अन्यतम है, 16 वर्ष की अवस्था में प्रभुपाद जी का पदाश्रय करके उनके साथ में रख करके वक्ता लेकर के भिक्षा करते, भिक्षा मैंने क्या, भिक्षा देने के लिए जाते थे, नाम है भिक्षा ग्रहण करना, भिक्षा ग्रहण करना नहीं, एक पैसे के बदले भगवान को दे रहे हैं दान, ये भिक्षा क्या हुआ,
भगवान देना हुआ,
भगवान को देने के लिए बक्से में जाते थे, ये बक्का कौन दिया, प्रभुपाद ने, बक्से में क्या है, भक्ति है, इसको दे रहे हैं, तुम चाहो और ना चाहो हम तुमको भक्ति देंगे, कैसे, एक पैसे के बदले में तुमको सर्वोत्तम महाप्रभु जी अनर्पित जो चिराग जो ले आए थे, गोपी उन्नत उज्जवल भाव की शोभा स्वरूप मंजरी
इसको देने के लिए वो बक्से में लेकर के जाते थे प्रचार। आज उन्हीं की वजह से तो हम सब लोग आए हैं। इन सब चीजों को अच्छी तरह से उगाना चाहिए, समझने पर तो प्रभुपाद को हम लोग समझ सकते हैं। हीरा का मूल्य कौन जानेगा,
जौहरी
जौ नहीं जानेगा। जौहरी नहीं है वो कहेगा कांच का टुकड़ा है फेंक देगा, और जौहरी समझेगा यहाँ इसका मूल्य। इसलिए प्रभुपाद को समझने के लिए भी ऐसे गुरुग्राही तत्वज्ञ वैष्णव की आवश्यकता। प्रभुपाद यदि नहीं होते, आज विश्व में जिस प्रकार से नाम का प्रचार हुआ है, शुद्धा भक्ति का प्रचार हुआ है, हम जैसे धुरंधर लोग भी इस जगत में प्रभुपाद जी का गुरु जी का पदाश्रय किए, ये सब संभव बन सकता। इसलिए अब समय अधिक हो गया, इसलिए मैं आज यहीं पर बैठकर कल हम लोग सभी लोग सब ब्रह्मचारी सब लोग इस पर कुछ बोले। अभी दो मिनट या चार मिनट अंग्रेजी में थोड़ा सा वो सब लोग बैठे हैं, उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा पड़ा सब।